أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب قلندر شعور کے صفحہ نمبر 65 سے ہم آج کے مطالعے کا آغاز کریں گے. ٹاپک ہے زمین کے اندر بیج کی نشو نما. حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں کہ عام طور سے یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ محنت اور جد و جہد کے بغیر وسائل کا حصول ناممکن ہے. غور کریں پہلا جملہ کیا ہے. عام طور پر یہ تاثر لیا جاتا ہے، یعنی یہ لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ محنت اور جد و جہد کے بغیر وسائل کا حصول ناممکن ہے. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن وسائل کے حصول میں ہم جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں وہ ایک قاعدے اور قانون کے تحت پہلے سے موجود ہیں. نوٹ کریں کہ قلندر شعور کے طلباء سے یا قلندر شعور کو اپنانے کی خواہش رکھنے والوں کی توجہ کس طرح سے وہ ایک بنیادی بات، ایک بنیادی حقیقت کی طرف مبذول کرائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہمیں تاثر ملتا ہے یا ہمارے ذہنوں میں بات بٹھائی گئی ہے کہ جد و جہد کے بغیر وسائل کا حصول ناممکن ہے. اب اس میں باریکیاں نوٹ کریں کہ وسائل جد و جہد کے بغیر ملتے ہیں. آپ کو اپنے مقصد کے لیے جد و جہد ضرور کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے. فرق سمجھے. کیا ہوتا ہے کہ ہم کنفیوز ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری بات محنت اور جد و جہد اور کوشش کی ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ محنت اور جد و جہد کے بغیر وسائل کا حصول ناممکن ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن وسائل کے حصول میں ہم جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں وہ ایک قاعدے اور قانون کے تحت پہلے سے موجود ہے. اب یہاں پہ ہمارا شعور گڑبڑ کرتا ہے کہ وہ ایک لفظ کو بیچ میں سے ہٹا کر اب یہاں پہ صاف بتایا گیا کہ وسائل بغیر کوشش اور کاوش کے آپ کو دستیاب ہوں گے. آپ نے کوشش اور جد و جہد اپنے ٹارگٹ کے لیے کرنی. غور کریں، یہ ابہام جو تھا، یہ بہت سارے کئی دفعہ بات ہوتی ہے دوستوں سے تو وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی ایک جگہ آپ لکھتے ہیں کہ محنت اور جد و جہد کے بغیر وسائل ملتے ہیں، دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کہ محنت اور جد و جہد کرنی ضروری ہے، تو یہ کیا قصہ ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ میں نے یہ اس جملے کو اسی لیے آپ کی طرف توجہ دلا دی کہ اس میں یہ لفظ وسائل پہ توجہ دیں کہ تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ محنت اور جد و جہد کے بغیر وسائل کا حصول ناممکن ہے. یہ ہمیں بچپن سے بٹھا دیا گیا ہے اور اسی شعور پہ ضرب لگائی جا رہی ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن وسائل کے حصول میں ہم جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں وہ تو ایک قاعدے اور قانون کے تحت پہلے سے موجود ہیں. کسان جب محنت کر کے زمین میں بیج ڈالتا ہے، اب جو کسان کرتا ہے اس کا نام ہے محنت، وہ زمین میں بیج ڈالنے کے لیے پہلے زمین کو تیار کرتا ہے، پھر اس میں ہل چلا کے، سہاگا پھیر کے، اس کو ہموار کر کے، اس میں پانی کے راستے بنا کے، اس کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے، اور اس بیج کی نشو نما سے انسانی ضروریات کے لیے قسم قسم کی غذائیں فراہم ہوتی ہیں. اور یہ سب اس وقت ممکن ہوتا ہے جب پہلے سے وسائل موجود ہوں. مثلا اب دیکھیے کیسے واضح کی جا رہی ہے بات. مثلا بیج کا موجود ہونا، اگر بیج نہ ہو تو کہاں سے اگے گی فصل. زمین کا موجود ہونا، پھر زمین کے اندر بیج کو نشو نما دینے کی صلاحیت کا ہونا، बीज को नशोनुमा देने की सलाहियत का होना, ये भी वसाइल है। बीज की नशोनुमा के लिए पानी का मौजूद होना, फिर चांदनी का मौजूद होना, हवा का मौजूद होना, और मौसम के लिहाज से सर्द और गर्म फिजा का मौजूद होना, धूप का मौजूद होना। अगर बीज मौजूद ना हो या जमीन के अंदर बीज को नशोनुमा देने की सलाहियत मौजूद ना हो, पानी मौजूद ना हो, हवा मौजूद ना हो, तो इंसान की हर कोशिश बेकार हो जाएगी। अब इस पैराग्राफ में आपने देखा कि असल में वसाइल से क्या मुराद ली जा रही है, किन वसाइल का वो तस्करा कर रहे हैं। ये सारे वसाइल जिनकी बाबत कलंदर शऊर आगाह कर रहा है, इस पे गौर व फिक्र होना चाहिए, इस पे आपकी तवज्जो मरकूज रहनी चाहिए। अगला टॉपिक है अल्लाह की ज़ेली तख्लीक। अब इसी बात को जारी रखते हुए हज़रत मुर्शिद करीम ने यह फरमाया कि अल्लाह का ये वस्फ है, यानी कि ये अल्लाह की सिफात में से सिफत है, कि जब वो किसी चीज़ की तख्लीक करता है तो उस तख्लीक से अरबों खरबों तख्लीकात वजूद में आती हैं। अगर आदमी पैदा किए तो आदमी से आदमी देखें कितनी खरबों तख्लीकात वजूद में आई कि नहीं आई। हर तख्लीक में आगे तख्लीक करने की सलाहियत रखी। अल्लाह का ये वसस है कि जब वो किसी चीज को तख्लीक करता है तो उस तख्लीक से अरबों खरबों तख्लीकात वजूद में आती हैं। हम समझते हैं ये ऐसे ही एक शायराना या अदीबाना अंदाज कलाम है, नहीं, ये हकीकत है। मौजूदा दौर में बिजली की मिसाल हमारे सामने, अब अल्लाह की एक ज़ेली तख्लीक, बिजली ज़ेली तख्लीक है, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी है। अब इस बिजली के जरिए, अब इसे ज़ेली क्यों कहा, ज़ेली का मतलब है कि ये असल में बादलों में पैदा होती है या इलेक्ट्रॉन की हरकत से वजूद में आती है, तो ये एक ज़ेली तख्लीक हुई, असल तख्लीक इलेक्ट्रॉन हुआ। तो अल्लाह की एक ज़ेली तख्लीक बिजली इलेक्ट्रिसिटी है। इस बिजली के जरिए हजारों इजादात मंजरे आम पर आ चुकी हैं और आइंदा आती रहेंगी। इस सूरत हाल के पेश नज़र हमारे ऊपर ये राज मुनकशिफ होता है, यानी इस एक मिसाल पे गौर करें कि अल्लाह ने वसाइल इसलिए तख्लीक किए हैं कि नौ इंसानी उन वसाइल के अंदर मख्फी कुवतों को तलाश करके उनसे काम ले। यह है इंसान का असल मुकाम, कि जो वसाइल अल्लाह ने दिए हैं वो उन वसाइल के अंदर मख्फी कुवतों को तलाश करे। अब ये मख्फी कुवतों को कैसे तलाश करे, और जब कौम उन मख्फी सलाहियतों की तलाश में लग जाती है तो उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से नए नए इंकशाफात होते हैं। अब ये नए नए इंकशाफात भी अल्लाह ही अता करता है, मुनकशिफ करना ये अल्लाह की सिफत है, इसी से लफ्ज कशफ है। जब वो इंकशाफात की रोशनी में तफक्कुर करती है तो नई नई इजादात वजूद में आती रहती हैं। कलंदर शऊर हमारी रहनुमाई करता है कि कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं सब दो रुखों पर कायम है। अब बात चल रही है वसाइल के अंदर मख्फी कुवतों को तलाश करना, तो वसाइल के अंदर मख्फी कुवतें क्या हैं, पहले तो वसाइल का जाहिर देखेंगे फिर उसका बातिन देखेंगे। इसलिए ये बात यहाँ पे बयान हो रही है कि कलंदर शऊर हमारी रहनुमाई करता है कि कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं सब दो रुखों पर कायम है। तख्लीक का एक रुख जाहिर है और दूसरा रुख बातिन। अब देखिए ये जाहिर और बातिन की शरह आने लगी है। अब पानी एक सयाल चीज़ है, यानी लिक्विड माया, पानी एक सयाल चीज़ है, इसी से लफ्ज़ सयाल से सैलाब है, सैल बहने को कहते हैं, बहने वाली चीज को सयाल कहते हैं। पानी एक सयाल चीज है, ये उसका जाहिरी रुख है, यानी पानी जिस तरह हमें नजर आ रहा है ये उसका जाहिरी रुख है। लेकिन जब पानी के अंदर मख्फी सलाहियतों को तलाश किया जाता है तो उसकी बेशुमार सलाहियतें हमारे सामने आती हैं। यानी पानी के अंदर मख्फी सलाहियतें, पानी का बातिन हुआ। तो बातिन किसको कहा? किसी भी चीज के अंदर जो पोशीदा, छुपी हुई, खुफ्ता, सोई हुई मख्फी सलाहियतें जो हैं, ये उसका बातिन है। इसी तरह लोहे की मिसाल है, लोहा बज़ाहिर एक धात है। अब ये लफ्ज बड़ा मानी खेज है, यहां पे बज़ाहिर यानी उसका जाहिर एक धात जैसा है। लोहे के जर्रात के अंदर जब कोई शख्स मख्फी कुव्वतों को तलाश कर लेता है तो नई नई इख्तराआत और इजादात उसके इरादे और इख्तियार से बनती रहती हैं। यानी लोहे के की जाहिरी शक्ल धात की है, उसका एक रंग है, एक उसमें जाहिरी खसूसियात हैं, सख्ती है वगैरह वगैरह, लेकिन उसके अंदर जो खुफिया मख्फी छुपी हुई पोशीदा सलाहियतें हैं, जब इंसान उनको तलाश कर लेता है या उनसे काम लेना शुरू कर देता है तो वो तलाश करता है तो अल्लाह उसको तलाश में कामयाबी देता है। तो फिर क्या होता है? फिर तरह तरह की इख्तराआत और इजादात सामने आती हैं। यानी इजादात और इख्तराआत आप अपने काम की सहूलत के लिए करते हैं और ये इख्तियार आपको अल्लाह ने दिया है। अब इसी चीज को अगर हम समझ के इसको जानने में लग जाएं कि किसी चीज का जाहिर क्या है और बातिन क्या। अब हम हैरान होते रहते हैं, भाई लोहा मुझे जाहिर में ये दिख रहा है, मैं इसका बातिन क्या देखूं? तो बातिन से मुराद है लोहे के अंदर छुपी हुई सलाहियतें। पानी का बातिन है उसके अंदर छुपी हुई सलाहियतें। इसी तरह जब हम किसी इंसान को मिलते हैं तो उस इंसान का जाहिरी वजूद, उसकी शक्लो सूरत, रंग, नाम, कौम वगैरह, ये सब जाहिरी बातें हैं। असल उसका बातिन, उसकी अंदर मौजूद सलाहियतें हैं। ये बात देखिए किस खूबसूरती से हजरत मुर्शिद करीम ने वाजे कर दी। जब फरमाते हैं कि जब हम किसी चीज के अंदर अल्लाह की सिफात तलाश करते हैं, अब यहां देखें चीज के अंदर अल्लाह की सिफात काम कर रही हैं, तो गोया जब हम किसी चीज के अंदर उसकी मख्फी सलाहियतों को खोजते हैं तो दर हकीकत हम अल्लाह की सिफात को तलाश कर रहे होते हैं। तो हमारे ऊपर ये मुनकशिफ होता है कि पूरी कायनात मौजूद है, यानी वजूद रखती है। कायनात में जो कुछ बनाया गया है या जमीन में जो कुछ मौजूद है, ये सब इंसान के लिए तख्लीक किया गया है। आपको ये जुमला अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ये बहुत ही कीमती बात है। क्या? कि कायनात में जो कुछ बनाया गया है या जमीन में जो कुछ मौजूद है, वो सब इंसान के लिए तख्लीक किया, इसीलिए इंसान को आखिर में भेजा गया, क्योंकि पहले दरबार सजता है फिर बादशाह सलामत तशरीफ लाते हैं। आपको कलंदर शऊर ये एहसास दिला रहा है कि आपका असल रुतबा और स्टेटस क्या है। आप इन चीजों के मोहताज और गुलाम न बने, ये वसाइल खुद ब खुद आपको मुहैया होंगे। आपको अपने काम करना है और आपका काम अल्लाह को जानने के अलावा कोई और नहीं है, कुछ और काम नहीं है। और उसका रास्ता हजूर अलैहिस्सलाम ने बताया कि आप खुद को अपने आप के अपने अंदर खोज लें। अगर आपने अपने अंदर खोज लिया तो आपकी मुलाकात अल्लाह की बख्शी हुई सलाहियतों से होगी और वो अल्लाह की सिफात का अक्स होने की वजह से फिर आपको अल्लाह की सिफात भी समझ आएंगी। अब अगला टॉपिक है सही तारीफ। अब बात चल रही थी स्तगना के चैप्टर की, ये स्तगना का चैप्टर चल रहा है। अब यहाँ पे इतनी बातें एक्स्ट्रा बताकर हमारे कॉन्सेप्ट्स को वाजे करके फरमाया कि सही तारीफ क्या है। इस्तगना से मुराद सिर्फ ये ही नहीं कि आदमी रुपए पैसे की तरफ से बेनियाज हो जाए, यानी ये भी एक मुगालता है, क्योंकि रुपए पैसे और ख्वाहिशात से कोई बंदा बेनियाज नहीं हो सकता। ज़रूरियात ज़िंदगी और मुतालिकीन की कफालत एक लाजमी अमर है। अमर, अब देखें यहाँ पे अमर का मतलब काम है, एक लाजमी अमर है और इसका ताल्लुक हकूकुल इबाद से है, यानी आप इससे बेनियाज नहीं हो सकते। इस्तगना से मुराद ये है कि आदमी जो कुछ करे उस अमल में उसके साथ अल्लाह की खुशनुदी हो, यानी अमल में उसके मकसद की वजह के साथ साथ अल्लाह की खुशनुदी भी शामिल हो, ये है इस्तगना। कि आप जो काम भी करें इसलिए करें कि ये काम करते अल्लाह देख रहा है मुझे और खुश हो रहा है, आप इस जज्बे से जब करेंगे तो आपको इस्तगना हासिल होता चला जाएगा। दोबारा सुन लें, फरमाया इस्तगना से मुराद ये है कि आदमी जो कुछ करे, यानी जो कुछ करे उस अमल में उसके साथ अल्लाह की खुशनुदी हो और इस तर्ज फिक्र या अमल से अल्लाह की मखलूक को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। ये देख लीजिए शर्तें, ये है इस्तगना। इस्तगना क्या है कि आप जो भी करें इस जज्बे से करें कि अल्लाह खुश हो रहा है, अल्लाह को मैंने खुश करना है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहा हूँ। और साथ में जाहिर है जब आप अल्लाह को खुश कर रहे हैं तो उसकी मखलूक को तो नाखुश नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ज़रूरी है कि उस तर्ज फिक्र या तर्ज अमल से अल्लाह की मखलूक को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे। हर बंदा खुद खुश रहे और नौ इंसानी के लिए मुसीबत और आज़ार का सबब ना बने। आपको खुश रहने का तरीका और सलीका सिखा दिया कि आपने खुश रहना है अपने खर्चे पे, आपने खुश रहना है खुद रहना है, आप अपनी खुशी के लिए किसी के लिए मुसीबत और आज़ार का बायस ना बन जाए। ये एक वाहिद चेक है, ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है कि बंदे के जहन में ये बात रासख हो कि कायनात में मौजूद हर शय का मालिक दरोबिस्त अल्लाह है। अल्लाह ही है जिसने ज़मीन बनाई और अल्लाह ही है जिसने बीज बनाया, अल्लाह ही है जिसने ज़मीन को और बीज को ये वस्फ बख्शा कि बीज दरख्त में तब्दील हो जाए और ज़मीन उसको अपनी आगोश में परवान चढ़ाए, पानी दरख्तों की रगों में खून की तरह दौड़े, हवा रोशनी बनकर दरख्त के अंदर काम करने वाले रंगों की कमी को पूरा करे। ज़रा गौर करें एक एक जुमले में क्या क्या राज बता दिए कि हवा रोशनी बनकर दरख्त के अंदर काम करने वाले रंगों की कमी को पूरा करे, धूप दरख्त के नापुख्ता फलों को पकाने के लिए मुसलसल रब्त और कायदे के साथ दरख्त से हम रिश्ता रहे, चांदनी फलों में मिठास पैदा करे। अब ये बात मुझे यकीन है कि अक्सर लोगों को मालूम नहीं कि धूप दरख्त के नापुख्ता फलों को पकाने के लिए ज़रूरी है और चांदनी फलों में मिठास पैदा करती है, और ज़मीन की ये ड्यूटी है कि वो ऐसे पत्ते और फल पैदा करें जिनसे मखलूक की ज़रूरियात मौसम के लिहाज से पूरी होती रहें। और करें ये दरख्तों की ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कैसे ईमानदारी से पूरी करते हैं, उनको पानी चाहिए, उनको हवा चाहिए, उनको रोशनी चाहिए, उनको चांदनी चाहिए, उनको ज़मीन चाहिए, सब चीज़ें पहले से दस्तयाब हैं, तब पौधा काम करता है। इसी तरह अगर हम अपने काम से काम रखना सीख जाएं तो वसाइल अल्लाह खुद ब खुद मुहैया किए हुए हैं, बल्कि पहले से मौजूद हैं वसाइल। मेरा ख्याल है यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ पे आपके जहनों में कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिए।
सर मेरा एक सवाल है
जी,
इस अमल में इसके साथ अल्लाह की खुशनुदी हो, इसमें मुझे समझना है सर, क्या हम अल्लाह को खुश रखने रख सकते हैं, यानी एक बंदे होने के नाते?
बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमारा काम ही अल्लाह को खुश करना है। अल्लाह ने हमें इसीलिए तख्लीक किया कि हम को देख के अल्लाह मियां खुश हों। अल्लाह ने अपनी खुशी के लिए आपको तख्लीक किया ना। आपने जो भी काम करना है इस जज्बे से करना है। मैंने जुमला कहा था, आप दोबारा सुन लीजिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप जो भी करें आप ये सोच के करें कि मुझे ये काम करते देखकर अल्लाह खुश हो रहा है। और करें हम शौरी तौर पे देखें ना, आपके शौर ने पर मारा कि जी अल्लाह को खुश करने की मेरी क्या हैसियत है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वो जो ज़ादिया मेरी गुफ्तगू का था, हजूर मुर्शिद करीम के इरशादात का है, जरा उसको पकड़े ना, उसको टो करें कि वो ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो जो अमल भी आप करें। अल्लाह की खुशनुदी का क्या मतलब है? बात तो आपकी सही है कि हमारी कोई हैसियत नहीं है, भाई अल्लाह ने हमें तखलीक इसीलिए की है, तभी तो कहा जन्नत में रहो। गौर करें, जब अल्लाह ने चाहा कि आप खुश हो तो अल्लाह आपको खुश देखकर ही तो खुश हो रहे हैं, हाँ या नहीं? तो आपने क्या करना है? सिर्फ खुश रहना है, साफ तो लिखा है, हैं? क्या जुमला पढ़ा आपने कि हर बंदा खुद खुश रहे, क्या उसके तर्ज़े अमल में ये बात होनी चाहिए कि मैंने खुश रहना है और मखलूक को कोई आज़ार नहीं पहुंचाना, ठीक है? और नोए इंसानी के लिए ख़ास तौर पे, मखलूक को तो कई चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए आप उनसे डरना शुरू कर दें, तो लफ्ज़ लिखा है नोए इंसानी, यानी दूसरे इंसान को ध्यान में रख के आपने खुश रहना है। क्यों? क्योंकि उसका भी मालिक अल्लाह है, आपका भी मालिक अल्लाह है। ये वजह भी बता दी कि क्यों क्यों नुकसान नहीं पहुँचाना, क्योंकि अगर उसे नुकसान पहुंचेगा तो अल्लाह की नाराजगी का सबब बनेगा। अल्लाह के सिस्टम को नहीं समझ रहे आप, ठीक हो गया? समझ आ गई?
थैंक यू सो मच सर जी,
आई एम ग्रेटफुल जी कि आपने इतना प्यारा सवाल पूछा, ये बहुत जरूरी था, ये मुगालता दूर होना जी। और किसी के जहन में कोई सवाल हो तो? जी जनाब अली,
जी डॉक्टर साहब,
जी जनाब,
डॉक्टर साहब मेरे पास तो कोई सवाल नहीं है, क्या एकदम आपका लेक्चर पूरा सुन नहीं पाया।
अच्छा चले, आप कोई बात नहीं, आप इसको
कोई और कैंडिडेट का कोई सवाल करना चाहे तो वो पूछ सकते हैं।
जी भाई चले, जी वालेकुम अस्सलाम
सर, जिस तरह सूरज चांद दरख्त अपनी ड्यूटी पे अगर सोचा अदा करें तो इंसान को भी चाहिए कि अपनी ड्यूटी की तरह अल्लाह की रजा के लिए अदा करें।
जी हाँ, ये कुरान की आयत है ना, सभे लिल्लाह है माफ समावाते वलर, सभे सभा का मतलब ही ड्यूटी है, ہم نے اس کا تسبیح بنا دیا، لہذا آپ تسبیح پڑھتے رہیے. دیکھیں نا، سبھا کا مطلب ہے ڈیوٹی دینا. اب پودے، یہ پودوں، اتنے پودے، اتنے جانور، اتنے پرندے، سب کہتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھی کسی کے ہاتھ میں تسبیح؟ اصل میں الفاظ کا درست مفہوم اور صحیح ربط ضروری ہے، تب بات سمجھ میں زیادہ واضح آتی ہے. اب آپ نے دیکھا میں نے کیا کیا کہ وہ جو الفاظ تھے وہ ان کو ہی وضاحت عرض کر دی. اب سورج کا وقت پہ نکلنا یا زمین کا سورج کے گرد گھومتے ہوئے اپنے محور پہ گھومنا، یہ سب اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. یہی ڈیوٹی ہے کہ اللہ نے جس کام سے لگا دیا وہ کرتے جاؤ. اب انسان سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ بچپن دیکھیں اپنا، یاد کریں. کیوں بار بار بچپن کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے؟ کیا بچے تھے تو خوش تھے، یہ معاشرے نے ہمیں ناخوشی سکھا دی. ناخوشی سے کس نے روشناس کرایا؟ معاشرے نے. بدھا کی مثال ہے نا آپ کے پاس، کہ اس کو اس کے باپ نے معاشرے سے کاٹ کے رکھا. جب وہ معاشرے سے واقف ہوا تو اس نے دیکھا یہاں تو نری ناخوشی ہے، تو وہ سوچنے پڑ گیا، یہاں سے بات چل پڑی. یہ ساری باتوں پہ غور ہونا چاہیے. جب تک قرآن نے دیکھے نا 756 دفعہ سے زائد یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ غور کریں. جب تک ہم خود غور نہیں کریں گے کوئی بات پلے نہیں پڑے گی. یہ سوال جواب بات کو سمجھ میں ذرا سہل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، غور تو آپ کو خود ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی.
سر ایک اور سوال ذہن میں آ رہے
ہیں، ارشاد
شیئر کر دیں گے.
جی
دراصل کسی عمل میں معنی پہنانا تو پھر برا نہیں، کوئی عمل کوئی اچھا نہیں، تو پھر یہ دو چیزیں کس وجہ سے کیوں ہیں؟
تاکہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچے. دیکھیں نا، جب آپ کوئی عمل اس لیے کرتے ہیں کہ دوسروں کا بھلا ہو تو یہ عمل میں معنی پہنانا ہو گیا. اب آپ آگ کی مثال دی نا حضور مرشد کریم نے، کہ آگ عمل برا نہیں ہے، آگ نے تو جلنا ہے، آپ نے جلانا ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ آگ سے کھانا پکا کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، شکم پوری کرنی ہے، یا کسی کا گھر جلانا ہے؟ اب یہ کسی کو آگ لگانی ہے تو یہ جو ہے یہ بری حرکت ہے، اس سے دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس لیے یہ جو میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ بڑا آسان ہے، آپ قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ بنا لیں، آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کی خوشنودی کا پتہ نہیں ہے، تو وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام میں سے تو ڈھونڈ سکتے ہیں نا کہ اللہ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے، کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے.
تو سر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہے برا اس لیے کہ اللہ کا پس، جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ اس سے اللہ کو پہچاننے والی بات بھی آ جاتی ہے.
جی ہاں بالکل. دیکھیں نا، اللہ نے یہ چیزیں آپ کے استعمال کے لیے بنائی ہیں، آپ نے انہیں نیک نیتی سے یعنی اس نیت سے استعمال کرنا ہے کہ مجھے اور دوسروں کو کا بھلا ہو. غور کریں، بس اس سے دوسرے کا آزار نہ بنے، دوسرے کے لیے مشکل کا سبب نہ بنے. صاف تو بتا دیا، یہ معیار اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، بس بات ختم ہو گئی، آپ روحانی بن گئے. اور کیا ہوتا ہے روحانی؟ اور وہ بھی محض اللہ کی وجہ سے، اللہ واسطے. اس لیے نہیں کہ آپ کو کوئی فائدہ ہے یا آپ کو کوئی نقصان ہے یا اس کے، نہیں قطعاً نہیں. آپ نے صرف اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ واسطے میں کر رہی ہوں کہ مجھے خوش رہنا ہے اور دوسروں کو خوش رہنے دینا ہے. اگر وہ نہیں ہوتے تو ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کہ ان کو ضرور خوش کریں. ٹھیک ہو گیا؟
تھینک یو سو مچ.
چلیں. اپنا خیال رکھیے. میرا خیال آپ کا ٹائم پورا ہونے والا ہے. جی اللہ
حافظ. تھینک یو سو مچ سر.
جی اللہ حافظ.
تھینک یو سر.
اللہ حافظ.
اللہ حافظ. اللہ حافظ.
یہ پہلے کا کوڈ آیا ہوا ہے, ابھی تو کوئی نیا نہیں آیا. یہ ایس ایم ایس پہ نیا آیا ہے, وہ میں نے تمہیں بھیج دیا. یہ پہلے والا یہ تھا جو ای میل میں آیا تھا.